जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री राधा वृंदावन बिहारी की गौरंग महाप्रभु की श्री श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम हरे कृष्ण आप सबका पुनः स्वागत है हमारे वेस्ट विंग आईआईवाईसी कन्वेंशन में यहाँ पर तो अभी हम अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम क्लास हो रहा है स्पेशल यूथ प्रीचिंग के कनेक्शन में, और हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु। एक्चुअली राधेश्याम प्रभु के बारे में कुछ बोलना, कहाँ शुरू करना, कहाँ ख़त्म होगा वो भी पता नहीं, लेकिन एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हमारे पूरे भारत भर में जो युवा प्रचार चल रहा है, उसकी युवा प्रचार की अग्नि को प्रज्वलित करने में प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सब जगह हम देखते हैं, कहीं कहीं सब स्टेट्स में सब जगह से डिवोटीज आके राधेश्याम प्रभु और उनके टीम से कंसल्टेशन लेते हैं। इनका रेगुलर यूथ प्रीचिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और NVCC टेम्पल एक आइडियल एग्जाम्पल हो गया है यूथ प्रीचिंग का। तो प्रभु जी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ कि इस्कॉन के कितने सारे कार्यकलापों में प्रभु जी का हाथ है, टेम्पल मैनेजमेंट और उसके बाद बुक्स, सब जगह प्रभु जी का हाथ है। लेकिन प्रभु जी ने जो उनकी जो मेन सेवा जहाँ शुरुआत की थी यूथ प्रीचिंग, उसे पकड़ के रखा है। तो एक एक्चुअली एक तरह से इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है कि राधेश्याम प्रभु ने इतने सारे प्रकल्पों में अपना सारा हाथ रखकर भी मेन एक्टिविटी उनका यूथ प्रीचिंग रखा है, जिसके कारण आज भी यूथ प्रचार जो इतना फूल रहा है, फैल रहा है। तो जो IIYC जो हम इस अब जानते हैं कि कुछ तीन सालों से बना हुआ है और रेगुलर कन्वेंशंस हो रहे हैं, इसकी जो नींव थी फाउंडेशन, ये भी राधेश्याम प्रभु के थ्रू आई। और IIYC के जो एडवाइजरी बोर्ड में राधेश्याम प्रभु का प्रमुख भूमिका है, और हमेशा हम IIYC जो IIYC कोर टीम या वेस्ट विंग कोर टीम है, हमेशा राधेश्याम प्रभु के पास जाते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि राधेश्याम प्रभु यहाँ पर आए हैं, और राधेश्याम प्रभु अभी अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे, और ये प्रेजेंटेशन हिंदी में होगा। हरे कृष्णा। तो राधेश्याम प्रभु का हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे, तीन बार हरि बोल बोल कर। हरि बोल, हरि
बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
मैंने नोट्स इंग्लिश में तैयार की है, लेकिन हिंदी में बोलने के लिए बोला है, ठीक है, हिंदी में प्रयत्न करेंगे।
गुणादिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन् विच्छेन् न तापैरभिभूयते।
तीन भक्त बोल सकते हैं,
गुणादिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन् न तापैरभिभूयते। गुणादिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन् न तापैरभिभूयते। गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन् न तापैरभिभूयते। गुण अधिकात्
अधिक योग्य पुरुष से, मुदम प्रसन्नता, लिप्सेत अनुभव करे, अनुक्रोशम दया, गुण अधमात कम योग्य पुरुष से मैत्री मित्रता समानात समान गुण वाले से अनविच्छेद कामना करें नहीं तापै ही दुख से अभिभूयते प्रभावित होता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदाय होना चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वाले से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तात्पर्य सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं। और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। यही सभी भौतिक कष्टों के कारण हैं। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दयामय होना चाहिए, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट न करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण के को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। श्रीपाद नारद मुनि की तो आज हम IIYC वेस्टर्न विंग का कार्यक्रम चालू हो रहा है। सर्वप्रथम भागवत के सत्र में इस श्लोक रखा गया है। ये श्लोक सदाचार के संबंध में कुछ खास उपदेश हम लोगों को दे रहा है। तो मैं इस श्लोक के ऊपर बोलने के लिए अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि सदाचार मेरे में सदाचार के अभाव देखकर मैंने सोचा कि इधर गोवर्धन इको विलेज में आकर थोड़ा भक्ति वेदांत विद्यापीठ में ज्वाइन करके कुछ भक्तों से सीखूं भागवत। एक तो भागवत सीखना है, दूसरा भागवत के साथ कैसे हमें सही सदाचार होनी चाहिए। इधर के ग्रेस दामोदर प्रभु आप लोग उनसे सुन सकते हो, चैतन्य चरितामृत बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। ग्रेस गौरंग दर्शन प्रभु, ग्रेस बलराम शक्ति प्रभु, ऐसे अनेक भक्त लोग इधर बहुत सुंदर सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो एक उसके लिए मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। एक बार हमारे सत्र में ऐसे हम एक प्रश्न पूछ रहे थे कि शास्त्र में कभी कभी बड़े चरित्र वाले लोगों के बारे में भी कुछ त्रुटियाँ बताए गए हैं, जैसे भरत महाराज एक हिरण से आकर्षित हुए, सदाचारी पुरुष अजामिल कुछ ऐसे दृश्य अश्लील दृश्य देखकर पतित हुआ। इसे हम पढ़ते हैं भागवत में, अनेक बार सुनने को मिलता है इस तरह। तो हम पढ़ते समय हमारे मूड क्या होना चाहिए, भावना क्या होना चाहिए। तो इस गौरंग दर्शन प्रभु बता रहे थे एक क्लास में, हमें सोचना चाहिए कि वो जो चरित्र, एक तो हमने सुना भी है भगवान अपने भक्तों को, जैसे एक माँ एक बहु विवाहित होकर आती है उसको सिखाने के लिए उसके जो सास होती है वो क्या करते हैं, अपने बेटी को डांटती है, अपने बहू को नहीं डांटती, हमने सुना है। इसी तरह भक्त लोग योगमाया में रह कर कभी कभी जैसे मोहित अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया कृष्ण के पास उपदेश सुनने के लिए। लेकिन कभी कभी शास्त्र में इसके बारे में मेंशन भी नहीं है इसके बारे में। फिर भी हमें
समझ लेना चाहिए कि अगर कोई बड़ा चरित्रवान व्यक्ति हो, उन्होंने कुछ त्रुटि दिखाया है, हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान का ही आयोजन है, उनके द्वारा हमको सिखा रहे हैं, ये गलती उनका नहीं है। जैसे अर्जुन के चरित्र में दो चीज़ है, वन इज ए सॉफ्ट हार्टेड डिवोटी, वो बहुत कोमल हृदय वाला है इसलिए वो रो रहा था, हा? दूसरा है वो शारीरिक चेतना में आकर देहात्म बुद्धि में पढ़कर आसक्तियों के कारण रो रहा था, ये दो चीज़ है। तो हमें सोचना चाहिए कि सॉफ्ट हार्टेड डिवोटी इज़ फॉर अर्जुना, मेटल अटैचमेंट इज़ फॉर मी, मेरे लिए, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा हमको उसमें से, इस तरह उसके बाद एकदम क्लियर हो गया, हा? तो इस तरह ये चरित्र के ये सदाचार के बारे में इस श्लोक में वर्णन दिया गया है। ये विषय बहुत मुश्किल है इसके कारण, क्योंकि सदाचार के बारे में पढ़ना, सुनना, सुनाना कठिन नहीं है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि परिवर्तन उतना आसानी से नहीं आता है। इसलिए कम से कम शुरुआत मंगलमय शुरुआत होता है जब हम समझते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि समझने के बाद कम से कम हम सोचेंगे, सोचेंगे तो थोड़ा अपने बारे में भी लागू करने के लिए प्रयत्न करेंगे, ऐसे ही हम प्रगति करते हैं। अगर इस श्लोक के ऊपर बोलना हो तो सर्वप्रथम हमें वैष्णवों की महत्ता बताना चाहिए। जैसे वैष्णव के बारे में शास्त्र बताते हैं कि एक प्रभुपाद जी एक कोट करते हैं आचार्यों का, अगर ब्रह्मा जैसे चार मुख वाले व्यक्ति जो जो बुद्धिमान हो, यशस्वी हो, धनी हो, बहुत प्रभावशाली हो व्यक्ति, मैं उसके साथ संग नहीं करना चाहता अगर वो भक्त नहीं हो, ऐसे गीत में आता है। लेकिन अगर कोई सादा भक्त हो, सादा जैसे लोग स्पेशल डोसा चाहते हैं, सादा डोसा कोई नहीं चाहता है, एक भक्त सादा भक्त भी हो, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो, एक कोने में बर्तन घिस रहा हो कहीं भी, मैं उसके साथ में संग करना चाहूँगा अगर वो वैष्णव हो, ऐसे बताते हैं। कारण क्या है, वैष्णव का मतलब है जो जैसे भगवान बताते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती चरमंति च। गत प्राण का मतलब है इस दुनिया में सब जीव अन्नगत प्राण है, लेकिन वैष्णव जो है उनके लिए भगवान प्राण है। मछली पानी के बिना जी नहीं सकता, भक्त लोग भगवान के बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, भगवान ही उनके लिए सब कुछ है। ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान बताते हैं, अगर ऐसे भक्त चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो, वो गुरु का आश्रय लिया है लेकिन गुरु के किताबों को पढ़कर समझने के लिए भी क्षमता नहीं हो, भगवान बताते हैं ज्ञान दीपे न भास्वता, उस श्लोक में बताते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयामी आत्मभावस्तो। आत्मभावस्थ मतलब क्या है, भक्त के मन पुष्प के समान है, उस पुष्प के गंध जो है वो भक्त के हृदय में कृष्ण के लिए भाव है, वो गंध और मधु कृष्ण के लिए भाव है। और भ्रमर कौन है, भगवान है, तो भगवान आकर उस भाव रूपी मधु के ऊपर फूल के मन में बैठकर उसके भाव को चूस कर तृप्त हो जाते हैं, जो तृप्त होकर भगवान क्या करते हैं, उस भक्त को सब तरह के जानकारी अंदर से दे देते हैं, प्रेरणा दे देते हैं। इसलिए ऐसे भक्त शोक मोह भय इत्यादि से मुक्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जैसे नारद भक्षुत्र में बताया गया, तृप्तो भवती, तुष्टो भवती, आनंदी भवती, ऐसे 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 भक्त हो जाता है, इस तरह बताया गया है। तो ऐसे भक्त जो हैं वैष्णव भक्त, उनके संग के लिए हमें आतुर रहना चाहिए। वैसे तो वैष्णव की गुणगान शास्त्र में अनेक श्लोक में हुआ है, ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्यो सत्रयादि विशिष्यते, सत्रयादि सहस्रेभ्यो सर्व वेदांत पारगः सर्व वेदांत वित्कोट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते, और विष्णु भक्तों में भी एकांत भक्त बहुत दुर्लभ हैं, ऐसे बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम वैष्णवों के संबंध में गुणगान सुनेंगे, उसके बाद वैष्णवों की ओर आदर बढ़ जाएगा। जैसे ऋषभदेव अनेक प्राणियों के बारे में बोलते हैं, ये प्राणी से ये प्राणी श्रेष्ठ है, उससे ये श्रेष्ठ है, ऐसे बोलते जाते हैं, देवताओं के बारे में बोलते हैं, आगे बताते हैं, और इस तरह ब्रह्मा शिव हैं और वो सब देवता भी मुझे पूछते हैं, क्योंकि भगवान वासुदेव ही हैं ऋषभदेव, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन मैं ब्राह्मणों को वैष्णवों को पूछता हूँ, ऐसे बताते हैं वो। इसी तरह आप कपिल का पढ़ेंगे, कपिल देव का
थर्ड कैंटो 29 चैप्टर में वो बोलते हैं सूखा घास है उससे भी बढ़कर हरियाली हरा घास है उससे बढ़कर पौधा है पेड़ है और पंछियाँ हैं जानवर है ऐसे बोलते बोलते जाते हैं हा? जब पहुँचते हैं वो बताते हैं कि अभी मनुष्यों को देखेंगे मनुष्यों में नर मात्र मर्यादा बोलते हैं अगर किसी को नर शरीर मिला है उसको हमें आदर देना चाहिए क्योंकि मनुष्य का शरीर मिलना भी दुर्लभ है लेकिन वो मिलने के बाद अगर ऐसे मनुष्यों में से कोई वर्णाश्रम को अपना आया हो वो आदरणीय है उसको आदर दिखाना चाहिए क्योंकि वर्णाश्रम को स्वीकारा है उसने ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास विधिवत रहता है वो शास्त्र के अनुसार वो श्रेष्ठ है और उनमें भी अगर कोई गुणवान हो उसको हम और आदर देते हैं और उनमें भी अगर कोई राज पदवी प्राप्त हुआ हो उसको उसको राज मर्यादा बोलते हैं गुण मर्यादा है राज मर्यादा है आश्रम मर्यादा है जैसे नरमात्र मर्यादा है इस तरह और उनमें से भी ब्राह्मण को आदर देते हैं क्योंकि ब्राह्मण तीनों वर्ग के लोगों को गाइडेंस देता है और उनमें भी सन्यासी को और भी आदर देते हैं क्योंकि वो आठ जो वर्ण और आश्रम हैं उनमें से वो सबके लीडर बनते हैं ऐसे तो इस तरह भक्ति मर्यादा भी है अगर भक्ति में कोई श्रेष्ठ हो जैसे कनकदास था वो महान भक्त था कांचीपूर्ण था वो महान भक्त था नरोत्तमदास ठाकुर भी नरोत्तमदास ठाकुर में के पास आकर अनेक बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी दीक्षा लिया हालांकि वो खुद ब्राह्मण के सत्र के उस वर्ग में नहीं थे वो फिर भी उनसे दीक्षा लिया क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव थी इस तरह तो इस तरह हम लोग सर्वप्रथम वैष्णव के गुणगान शास्त्रों से पढ़कर समझकर उसके बाद ये भी समझते हैं कि उन वो कितने श्रेष्ठ हैं जैसे भगवान बताते हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटीश्वपि महामुनि ऐसे बताते हैं कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में सिद्ध पुरुषों में एक भगवान के भक्त एक है तो ये एक कारण है हम हमारे अंदर वैष्णव के लिए क्यों आदर बढ़ता है क्योंकि शास्त्र के वचन शास्त्र की वाणी के ऊपर अगर हमें अटूट विश्वास हो तो ये सुनने के बाद हमें वैष्णव की ओर स्वाभाविक रूप से एक आदर जगता है लेकिन हम ये सब जानने के पहले जब अगर हम कट्टर ब्राह्मण भी क्यों न हो अगर किसी जीव के अंदर त्रुटि होता है तो तुरंत हम दोषारोपण करना लगते हैं और हम सहन नहीं कर पाते हैं कि और खास करके अगर कोई धार्मिक बन गया व्यक्ति उसके अंदर त्रुटि दिखता है तो लगता है कि पुलिस बनकर भी चोरी कर रहा है और भी नाराज हो जाते हैं लोग बोलेंगे अरे बाहर जो चल रहा है इधर भी वही चल रहा है ऐसे अनेक लोग झगड़ा करते हैं लेकिन भगवान बोलते हैं कि भक्त जो हैं अगर वो यत्न कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो अगर वो यत्न करते करते पद दलित तो होता है कभी हो सकता है जैसे बच्चे को टॉडलर बोलते हैं ना छोटा बच्चा उसका माँ सिखाती है कैसे चलना लेकिन चलते चलते फिसल जाता है नीचे गिरता है माँ उसको हंसी मजाक नहीं उड़ाती है वो वापस उठाती है और सिखाती है कैसे आगे चलना है इसी तरह भगवान देखते हैं भगवान की नज़र भगवान की दृष्टिकोण ऐसा है इसलिए अभिजीत सुधर आचार्य इत्यादि बताया भगवान ने लेकिन अगर कोई कपटी होगा डोंगी है होगा भगवान की इस कोमल हृदय को समझकर उसका गलत प्रयोग करेगा वो उसको तो अधोगति प्राप्त होता है देखा जाता है इस दुनिया में लेकिन ये बात प्रभुपाद उसी तात्पर्य में लिखते हैं इसके बारे में लेकिन हम लोग भक्तों की ओर देखते समय भगवान की दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए इससे हम अपराध नहीं कर बैठेंगे तो सर्वप्रथम मैंने बोला कि आदर हमें आता है हमारे मन में क्योंकि शास्त्र की बात सुनकर अभी दूसरा कारण भी है आदर का जैसे पंचतत्व में आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु उनकी शुद्धता के लिए और प्रामाणिकता के लिए बहुत मशहूर हैं क्योंकि राजा प्रताप रुद्र को मिलने के लिए वो सहमत नहीं थे हम देखते हैं कितना स्ट्रिक्ट है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मशहूर हैं किसके लिए कृपा के लिए हैं दया के लिए बहुत मशहूर हैं अद्वैताचार्य प्रभु ए फर्वेंट प्रेयर उनके हृदय में ऐसे शुद्ध प्रार्थना थी भगवान के लिए भगवान को भी परलोक से इधर लाने की क्षमता थी उनमें इसी तरह गदाधर पंडित हैड अ स्टॉन्च डिवोशन टू डेटी वर्शिप इतना तक कि तोटा गोपीनाथ भी उठ बैठ गए वो उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा स्वीकारने के लिए इसी तरह श्रीवास ठाकुर उनकी
चैतन्य महाप्रभु की ओर प्रेमा भक्ति इतना तीव्र था, अपने बेटे मरने के बाद भी वो नाच रहे थे गा रहे थे संकीर्तन में, उनकी दृढ़ता भक्ति में हम देखते हैं। अभी पांच पंचतत्व की पांच गुण खास गुण में आपको आपको बता रहा था। अभी इसी तरह हम लोग वैष्णव में भी अगर कुछ खास गुण हमको दिखाई देता है उससे हम लोग प्रेरित होते हैं, क्या उन या तो उनकी त्याग भावना ना, या तो उनकी बुद्धिमता, नहीं तो उनकी शरणागति, नहीं तो उनके सदाचार, जैसे उनकी नम्रता सहिष्णुता इत्यादि को देखकर हम प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित का मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि ये असली वैष्णव है, इनके साथ मैं संग करूंगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, अगर इनके धोती पकड़ूंगा तो मैं भी भगवतधाम लौट जाऊंगा। इस तरह के मन में हमें विचार आता है कि इस वैष्णव के साथ संग करना चाहिए, इनके इनसे श्रवण करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं भी ऊपर उठना चाहिए, मैं बहुत आलसीपन कर रहा हूँ और आगे बढ़ना है, इस तरह हमारे मन में विचार आता है। ये भी एक कारण है आदर का। सर्वप्रथम तो सारे वैष्णव के लिए आदर प्राप्त होता है शास्त्र पढ़कर समझ कर, लेकिन उसके बाद वैष्णव के निकट आने के बाद वैष्णवों के इस तरह के खास गुणों को देखकर उन गुणों से हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, उसके बाद हम एक खास वैष्णव की ओर आदर बढ़ता है। तो हम उनको समझते हैं कि वो वरिष्ठ हैं, मैं कनिष्ठ हूँ, उनसे मैं सांग लूँ। क्योंकि वैष्णव जीवन में प्रभुपाद जी एक बार देखा कि क्लास में बहुत कम लोग बैठे थे, पूछा किधर है सब भक्त, बोले कि सेवा में जुड़े हैं। प्रभुपाद बोले सेवा के लिए किसी को लगाया जा सकता है पैसा देकर, भागो तुम क्लास होने के लिए पैसा देकर बिठा नहीं सकते हो किसी को, हैं भक्त लोगों को बुला लो बोला। तो क्योंकि वैष्णव के जीवन में हम लोग वेतन के लिए कुछ नहीं करते, हम ये प्रेममयी सेवा है, इसलिए जब तक इंस्पिरेशन नहीं होगा एक सीनियर जूनियर के बीच में, वो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से कितना भी पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी से ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर। हम बोलेंगे कि भागवतम क्लास 8 बजे सबको आना ही पड़ेगा, 9 बजे के पहले किसी को उठना नहीं है, इस तरह का पॉलिसी बना सकते हैं, पॉलिसी से कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि इसलिए हमने बताया कि किसी वैष्णव से हम इंस्पायर हो गए, हम अगर बाथरूम में भी नहाने के लिए जाना होता हो, वॉशरूम में भी गए हैं, उधर भी FM लेकर सुनेगा कोई व्यक्ति, हैं क्या बोला है, अगर बीच में कट हो गया तो रोएगा वो, हैं अरे लाइन सुन नहीं पाता क्या बोला बीच में, उदाहरण शुरू किया वो कट हो गया, मुझे बताओ क्लास के बाद में आकर। तो इस तरह के प्रेरणा को जगाना बहुत आवश्यक है सब जीवों में इस तरह है। तो ऐसे एक वैष्णव को हमने ढूंढ लिया तो उस वैष्णव के साथ हमारा रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, 2-4 का अगर आप लेकर भाई इसको वाइब्रेट करते हैं, ये भी वाइब्रेट होता है, ऐसा आवाज आता है, फिजिक्स में हम लोग करते हैं, रेजोनेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, ये जो बोल रहा है इनको समझ में आ रहा है, और ये समझ कर प्रश्न पूछ रहा है ये भी समझ गया इसका प्रश्न, और वापस जवाब दे रहे हैं, इनको अच्छा फिट हो गया इनका। इस तरह एक दूसरे के बीच में ये दिव्य ध्वनि जो है उसका अच्छी तरह जम गया। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा गुरु बोलते हैं। शिक्षा गुरु का मतलब है उनकी शिक्षा का असर पड़ता है हम में और हमारे में परिवर्तन आता है। जैसे मृगारी और नारद मुनि का रेजोनेंस हो गया, नारद मुनि ने जो बोला मृगारी को बैठ गया और उसने धनुष को भी तोड़ दिया, हैं और हरिनाम जपा, और नारद मुनि उनको बोला था कि मैं रोज भेज दूंगा तुमको ग्रोसरी, सब आ गया उनको, हैं कुछ चिंता नहीं रहा उनको, तृप्त हो गया मृगारी। तो इस तरह के वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में जो होता है शिक्षा दिया जाता है, वो स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब, संघ का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा और ज्ञान की ट्रांसफर होना चाहिए, और हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। अभी क्रूर मृगारी बना बहुत कृपालु बनाओ, इस तरह ऐसा अजामिल, वो बहुत बड़ा कामुक था, उसके हृदय प्रेम से भर गया विष्णु दूतों को मिलने के बाद, हम देखते हैं इसे। इस तरह रहुगण था, अहंकारी, अहंकार के वश में आया था, लेकिन जड़भरत के साथ संग करके नम्र बन गया वो। इस तरह हम हृदय परिवर्तन के बारे में देखते हैं, हम भागवत में अनेक उदाहरण ऐसे हैं। तो ये ही सीनियर जूनियर के संग का मूलभूत उद्देश्य है, हृदय में परिवर्तन लाना। ये धर्म का एक
महत्वपूर्ण अंग है हृदय में परिवर्तन लाना। आजकल स्कूलों में कॉलेज में बहुत सिखाया जाता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं है उधर, लोग और बिगड़ते जा रहे हैं कुत्ते बिल्ली जैसे, इसलिए कुछ उनका शिक्षा का कुछ मतलब ही नहीं है। तो वैष्णव के जीवन में अगर वैष्णव भी वैष्णव जीवन के अंदर प्रवेश करके धीरे धीरे अगर हम वरिष्ठ होते होते जाते हैं लेकिन हमारा बुद्धि भ्रष्ट होकर चरित्र बिगड़ता है, ये बहुत अफसोस की बात है। तो हम लोग सीनियर जूनियर की बात करते हैं, सीनियर लोग ऐसे व्यवहार करने चाहिए कि जूनियर को उनसे प्रेरणा मिले। अगर सीनियर बोलता कुछ करता और कुछ, उससे जूनियर को बहुत घातक होता है उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए। कोई बोलता है सुबह के क्लास में कोई मंगलारती मिस नहीं करना चाहिए, कोई जपा का टाइम छोड़कर नहीं जाना चाहिए, खुद ही छोड़कर चला जाता है, जाकर सो जाता है। तो लोग बोलेंगे अरे बोलता है बहुत, करता नहीं कुछ, ऐसे लोग बोलेंगे। तो वॉक योर टॉक बोलते हैं, इसकी अपेक्षा की जाती है। इसलिए तो सीनियर और जूनियर के संबंध में सीनियर को कैसे व्यवहार करनी चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं सर्वप्रथम चीज़ है वॉक योर टॉक। दूसरा है जूनियर जो होता है उसको इधर दिखाया गया, इधर बताया गया कि अनुकंपा दिखानी चाहिए, अनुक्रोशम गुणादमात। तो क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए दोनों शास्त्र बताते हैं। द वर्स्ट टाइप ऑफ डीलिंग एज सीनियर कैन डू विद अ जूनियर इज टू फिजिकली एक्सप्लॉइट, होमोसेक्सुअली एक्सप्लॉइट, वो सबसे वर्स्ट है। ही कैन एक सीनियर जूनियर को शोषण करना, फिजिकली शोषण करना। सिमिलरली देन यू कैन इमोशनली ब्लैकमेल। जैसे एक सीनियर थे, एक लड़का उनके पास मंदिर में आया, वो एक दो माला करता था, उसके बाद किसी दूसरे शहर में चला गया पढ़ाई के लिए। उधर जाकर मंदिर में गया, भक्ति में जुड़ा, 16 माला तक चला गया। तो उनको उधर ज़्यादा प्रेरणा मिला, तो इन्होंने अपने पुराने भक्त को बुलाया मंदिर में, प्रभु जी उन दिनों में आपने एक दो माला सिखाया हमको 8 साल पहले, अभी हम इधर आए हैं, इधर 16 माला तक आ गए हम, तो हम हमेशा हमारे हृदय में कृतज्ञ हैं आपके लिए, आपने शुभारंभ की हमारे आध्यात्मिक जीवन की, आपके संग से हुआ, अभी हम ऐसे कर रहे। वो बोले कि अच्छा 16 माला आ गए, तुम आओ वापस आकर मुझे मिलो, बोला जब गांव आते हो मिलो मुझे। गांव में गया, मिला उनको, तो प्रभु जी बोले कि देखो अभी तुम 16 माला तक आ गए, तुमको मेरे गुरु से ही दीक्षा लेना है और इसी मंदिर में ज्वाइन करना है फुल टाइम, ऐसे बोला उन्होंने। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके गुरु के बारे में मुझे मालूम नहीं और ये मंदिर में क्यों ज्वाइन करूँ मेरे नेटिव प्लेस में, तो उधर जो है उस भक्तों से मुझे प्रेरणा मिल रहा है। तो वो बोला उनको कि प्रभु जी मेरा पूरा आध्यात्मिक प्रगति उन लोगों से हुआ है और उधर के जो गुरु हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये बोले कि तुम पतिव्रता नहीं हो, तुमको पतिव्रता नारी जैसी होनी चाहिए, अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे नरक में जाओगे, ऐसे बोला उन्होंने। तो जोर से रोने लगा वो, जाकर बोला उन भक्तों को, बोला कि ऐसे बोल रहे हैं मेरे पुराने भक्त क्या। तो उन्होंने बोले आपकी मर्जी, वो लोग बोल रहे हैं, वो ये भी शेल्टर नहीं दे रहे हैं, ये भी लाद दे रहा है, इनको पता नहीं क्या करना, अगर इधर छोड़कर उधर जाएगा अब नेटिव प्लेस में, उधर खुशी से रह पाएगा क्या वो। तो इस तरह अगर सीनियर भक्त उनके अंदर पॉसेसिव मेंटालिटी हो, हम हर ये समझा, आप देखेंगे कि कभी कभी होता है कि आपने किसी को 16 माला तक लाया आपने, तो उसके बाद किसी दूसरे मंदिर में ज्वाइन करना चाहता है, तो हो सकता है कि किसी ने उसको खींचा भी है, हो भी सकता है। एक्चुअली बात करना चाहिए उनसे, बात करना चाहिए आपसे, बात करना चाहिए, अंततो गत्वा में देखना चाहिए कि भक्त के लिए उचित क्या है, वो कैसे अच्छा बढ़ सकता है, उसकी इच्छा क्या है, सब देखना चाहिए। अपक्व होकर सीनियर लोग अपक्वता से इस तरह का व्यवहार करेंगे, उससे क्या होता है जूनियर भक्तों का बड़ा नुकसान होता है उससे, इस तरह। और ये भी बताते हैं प्रभुपाद जी, जूनियर भक्त से हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए। जैसे कोई बोलता है पाँव दबाओ क्योंकि मेरा जूनियर हो, तो मालिश करो मेरा, मेरे कपड़े दो, और भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये करो ये करो, पर्सनल सर्विस इस तरह लेते हैं अनेक लोग इस तरह, ये उचित नहीं है। मैंने सुना कि उन दिनों में परम पूज्य रामानंद महाराज भी एक बार बताया था उन्होंने कि अगर कोई सीनियर डिवोटी इस तरह का धोती कुर्ता इत्यादि वगैरह धुला कर लेता है तो महाराज खुद ही किया अपने हाथ से, उनका खुद का कुछ एक दो दिन के लिए किया उन्होंने। सन्यासी लोग इस तरह सेवा ले सकते हैं। सन्यासी इज लाइफ इज एक्सट्रीमली बिजी एंड दे आर वेरी सीनियर, दे आर ओल्ड ऑल्सो, वो बहुत वृद्ध भी हैं। अभी उनको देखकर हम लोग नकली कर सकते हैं क्या उनकी? अच्छा नहीं, अगर हम सेवा लेंगे तो प्रभुपाद जी ने डांटा एक बार एक भक्त को, तुम एक्चुअली कब हम क्या सेवा ले सकते हैं, मैं सरल तरीके से आपको बता दूंगा। देखिए, जब तक मेरे हाथ पैर से कुछ काम हो सकता है तब तक मुझे ही करना चाहिए। जो मेरे हाथ पैर से सेवा हो नहीं सकता है तब मैं दूसरों का हेल्प ले सकता हूँ। अभी उदाहरण के लिए, उन दिनों में मैं बहुत गर्व करता था, मेरे लगेज किसी को नहीं दूंगा मैं। भगवान ने हाथ पैर दिया ना, हम उठाएंगे, लेकिन अभी मैं उठा नहीं पाता हूँ, थोड़ा भारी होता है सूटकेस, खास करके जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ना हो तब, नहीं तो लैपटॉप बैग में चार्जर इत्यादि बहुत हैवी हो जाता है कभी कभी, एक बार ना भी शिफ्ट हो गया उसके कारण, बाहर ज़्यादा होने का, तब हम मदद ले सकते हैं दूसरों से, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या। लेकिन अगर हम शरीर में ताकत है हमारे कपड़े धोने के लिए, हम कर सकते हैं, खुद करना चाहिए हमको। परम पूज्य प्रभुदानंद सरस्वती महाराज भी बोलते थे ऐसे, उनके साथ बात किया मैंने एक बार, एज लॉन्ग एज वी हैव स्ट्रेंथ इन आवर बॉडी वी शुड ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स आवर सेल्फ रादर दैन टेकिंग पर्सनल सर्विस फ्रॉम एनीबडी। तो अभी क्या होता है, इसको सीनियर डिवोटी इसको देकर जूनियर भी नकले करते हैं उसका। तो देखा एक भक्त जप कर रहा है तो अपने बीड़ बाग को निकाल कर उसके गोद में रख दिया, अपने फ्रेंड के गोद में रख दिया, वो जपा कर रहा, अशुभ जग गया उसने, तो ये बाथरूम जाकर वापस आकर उसके बाद उठाता है, उठाने के बाद ऐसे जग गया वापस, उसको क्या डिस्टर्ब करने का, इधर हैंग करोगे कहीं तो चले जाओ। क्योंकि सेवा लेने का आदत किधर से सीखा है इसने, किसी से सीखा ना, दूसरों से सेवा लेने का। तो इस तरह से अननेसेसरली एक्सप्लॉइट करना जूनियर करके, आजकल क्या हो गया, अनेक भक्त सीख लिया है कि कैसे लोगों के साथ प्रेम से बात करके अपने पॉकेट में डाल लेना लोगों को, ये अनेक लोग सीख लिया, क्योंकि इतने मोटिवेशनल सेमिनार आ गया है यूट्यूब में, सब पढ़ लिया है, प्लस माइनस प्लस सब सीख लिया है, कैसे बोलने का प्रेम से, वो उसको प्रसाद खिलाओ, धीरे धीरे उसको अपने आलिंगन के अंदर ले लो, उसको फॉलोअप करो और रोज व्हाट्सएप भेजते रहो, पीछे पीछे करो, छोड़ो मत उसको, ऐसे लोग गिरो कर लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं उसको मेरे अंदर, वो दुनिया के अंटार्कटिका में भी चला जाएगा, वो आर्टिका अंटार्कटिका फिर भी छोड़ेगा नहीं, ये इधर से रिमोट कंट्रोल है, उधर रखता है और रोज फोन करता है सुबह दोपहर शाम, ऐसे फॉलोअप करके अपने पॉकेट के अंदर रखते हैं लोग उसको, बेचारा उसका फ्रीडम चला गया उसका, ये रडार रेंज के बाहर जा नहीं पाएगा वो, ऐसे लोगों को रखते हैं। और ये लोग कभी कभी कल्ट लीडर बनते हैं। कल्ट लीडर का मतलब क्या है, इसको प्रिसेप्टर सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं। मतलब क्या है, मेरे लेक्चर छोड़कर तुम किसी का नहीं सुनने का, क्योंकि मैंने तुमको भक्ति में खड़ा किया है, मेरा ही सुनो, और मैं कुछ भी करना हो बाथरूम जाने के लिए भी पूछ कर जाने का, इस तरह कंट्रोल करते हैं लोगों को। ये भी सीनियर का बहुत ख़राब आदत है ऐसे। एक्चुअली मैंने तो सीखा मेरे गुरु महाराज से भी, उधर चौपाटी मंदिर में उन्होंने बहुत लंबा व्यासासन लगा दिया है, क्यों, उनके लिए इतना ही जगह जरूरत है, लेकिन उधर और चार लोगों को बिठा देते हैं वो, बिठा कर वही सीखा हमने। कभी भी उनसे नहीं सीखा कि सिर्फ मेरे से सुनो, ऐसा कभी नहीं, उन्होंने पाबंदी नहीं डाला। तो हमें समझना चाहिए कि हम जो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं वो दूसरा भक्त दे सकता है उनको। अगर वैज्ञानिक विज्ञान के संबंध में कोई मुझे पूछ रहा है, अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा तो चैतन्य चरण प्रभु के साथ उनको मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, वो जाता है तुरंत, वो कन्विंस हो जाता है उनको मिलने के बाद। ऐसा मेरा अनुभव है, हर एक भक्त जो है उसको कुछ ज़रूरत है, जो अगर ऐसा नहीं कि हम कृष्ण हैं कि हमारे पास षडैश्वर्य पूर्ण है, हम उसको तृप्त कर पाएंगे। कृष्ण भी छोड़ देते हैं, अगर कोई बहिर्मुख होकर इधर आ जाता है, कृष्ण को ही छोड़ दिया उसने, अरे कृष्ण को छोड़ दिया तो हमारे पास कैसे ठहरेंगे, हैं षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण को भी छोड़ा उन्होंने। इसलिए ये भी गलत चीज़ है कल्ट बनाना। अभी देखिए, अगर हम बड़े वक्ता हैं तो हम लोगों को इस्कॉन से, प्रभुपाद जी से, लोकल डाइटी से उनको
जोड़ना आवश्यक है। अगर इससे ना जोड़कर हम हमसे जोड़ेंगे उनको, तो हर एक वक्ता को कर्तव्य है कि अपने प्रवचन में बोलना चाहिए कि आप मंदिर में जाओ, क्योंकि मंदिर रहेगा, भगवान रहेंगे, प्रभुपाद जी भी पीछे बैठकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो भी रहेंगे, हम चले जाएंगे। क्योंकि मैं आज वक्ता हूँ, हम 20-30 साल के बाद हम किधर रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, यही कह करके हमको चलना है। लेकिन इस्कॉन मंदिर रहेंगे, डेटीज रहेंगे, प्रभुपाद जी रहेंगे, प्रभुपाद की किताब रहेंगे, है कि नहीं है? उनसे लोगों को जोड़ना चाहिए, ये हर एक वक्ता का कर्तव्य है। तो सीनियर शुड नॉट फॉर्म अ कल्टिस्ट मूवमेंट, और वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट जूनियर्स बाई पर्सनल सर्विस, डिमांडिंग पर्सनल सर्विस, एंड सीनियर ऑल्सो शुड नॉट सेट अ पुअर एग्जाम्पल, दे शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल, आदर्श उदाहरण उनको दिखाना चाहिए। आदर्श उदाहरण सब चीज़ों में, जैसे हमारे बोलना, हमारे व्यवहार, और इवन अवर थॉट प्रोसेस, क्योंकि जूनियर उसको भी देखते हैं, हमारे मन के अंदर घुसकर देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, द वे वी थिंक, द वे वी स्पीक, द वे वी बिहेव, ये थॉट वर्ड डीड, ये तीनों का असर जूनियर्स के ऊपर पड़ता है, वो भी उसके अनुसार ही वो सोचेंगे। अगर कोई पूछते हैं, प्रभु जी एक वक्ता आए हैं, एक खास वक्ता आए गए हैं, अभी अगर वो बोलते हैं ये फेमस प्रीचर वो मंदिर से इधर आए हैं, अभी निकट के गांव में आए, हम लोग जाना चाहते हैं, जा सकते हैं क्या? अगर उनके प्रीचर बोलता है, अच्छा मुझे मालूम नहीं था आ रहे हैं क्या, चलो मैं भी आता हूँ, हम सब लोग जाएंगे, अगर वो जाते हैं तो लोगों का ऊपर एक असर पड़ेगा। अगर ये बोलता है कि उधर क्या जाना है, हम हैं ना इधर, हमारे सुनकर अतृप्त नहीं हुए, वाई आर यू मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, क्या वाई आर यू गोइंग फॉर डिफरेंट मार्केट, इसके कारण अभी जो उनका बोलने से उसका असर पड़ता है लोगों के ऊपर ऐसे। इसलिए द सीनियर डिवोटीज बिहेवियर टुवर्ड जूनियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इन विषयों के बारे में ज़्यादा अभी बोला आज, इसका कारण क्या है, आप सब लोग प्रचारक हो, अपने अपने केंद्रों में जाते हो, विद्यार्थियों के केंद्र में, हम लोगों को लोग इतना विश्वास देते हैं जिसके लिए हम योग्य भी नहीं हैं। एक्चुअली हमारे गुरु योग्य हैं, प्रभुपाद जी योग्य हैं, हमारे अंदर क्या बड़ी आध्यात्मिक योग्यता है, लेकिन स्कूल के कॉलेज के बच्चे इतने विश्वास रखते हैं हमारे ऊपर, इतना। अगर आपके प्रचार में कभी लड़का लड़की दोनों आते हैं, लड़कियाँ ब्रह्मचर्यों को पिता के रूप में देखते हैं, वो सोचते हैं कि इस दुनिया में एक सरल और सीधा साधा और शुद्ध पुरुष ऐसे व्यक्ति मेरे पिताजी जैसे मिल गए, ऐसे वो लोग सोचती हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मचारी बनकर हम चरित्र भ्रष्टाचार करेंगे, हम चरित्र बिगड़ेगा हमारा, उससे कितना बड़ा नुकसान है समाज में, इस्कॉन के ऊपर, ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर और प्रभुपाद जी के ऊपर कलंक लग जाता है इसके कारण। तो देयरफॉर द कैरेक्टर ऑफ प्रीचर शुड बी अनडाउटेबल, उसमें सीसर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, ऐसे बताया गया है। आपको मौका अनेक मिलेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे बड़े बड़े करोड़पति आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं ब्रह्मचर्यों से। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी आर प्लेइंग विथ फायर, हमेशा गुरु के श्रीचरणों के पीछे छुप कर बैठे रहना चाहिए, हमेशा उनको वी शुड डायरेक्ट ऑल द क्रेडिट टू गुरु, अदरवाइज वी कैन पुट आवर सेल्स इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन। तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र इतना आदर्श है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यू कैन नॉट फाइंड वन फॉल्ट इन लॉर्ड चैतन्यस कैरेक्टर फ्रॉम द टाइम ही अपियर्ड इन द वर्ल्ड टिल ही रिटर्न बैक टू हिज अबोर्ड, यू कैन नॉट फाइंड वन फॉल्ट, इज अ स्पॉटलेस पर्सनैलिटी। इसलिए सीखना कुछ भी हो उनसे सीखना चाहिए। अगर वरिष्ठों से आदर करना हो, उन्होंने कैसे श्रीरंगपुरी उनसे आदर कैसे किया, जब उधर पंडरपुर में गए थे कैसे आदर दिया आप देख सकते हैं। और इसी तरह कैसे अद्वैताचार्य प्रभु को उन्होंने अपने गुरु जैसे ही आदर दिया उनको ऐसे, तो अपने गुरु के पदवी पर परमानंदपुरी इन लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत आदर देते थे, वो अपने गुरु जैसे ही माना उनको, तो मतलब अपने गुरु और गुरु के गुरु भाई इनको बहुत आदर दिया, उनके समक्ष एक बच्चे जैसे व्यवहार किया उन्होंने, ही वॉज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम, अपने बड़ापन को प्रदर्शित नहीं किया उनके समक्ष। तो हम ये भावना सही भावना है, खास करके गुरु और गुरु के गुरु भाइयों से है। हमारे चेतना में इस तरह का भावना होनी चाहिए कि मैं छोटा हूँ। कभी कभी ऐसे होता है, कोई शिष्य है, उसके पास कोई बहुत ही कला है, वो बहुत मशहूर बन गया है इस दुनिया में। कोई मशहूर वक्ता बन सकता है, कोई मशहूर गायक बन सकता है, कोई मशहूर प्रोजेक्ट डेवलपर हो सकता है दुनिया में। कुछ कुछ लोग 10-10, 20-20 मंदिर खड़ा किया है, मालूम है आपको, बड़े बड़े मंदिर भी बनाए हैं। अभी ऐसे व्यक्तियों के गुरु जो होते हैं वो सरल गुरु हो सकते हैं, एकदम सिंपल। मान लीजिए एक शिष्य है, उसके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में, उसके गुरु का 2000 लोग हैं उसके फॉलोअर्स हैं। अभी उसके शिष्य के मन में क्या भावना आ सकता है, वो क्या सोचेगा, हाँ देखो मेरे 8 मिलियन लोग हैं, इतने लोग सारे दुनिया मेरे साथ है, ऐसे लगता है, ऐसे उसको लगता है। लेकिन जो गुरु जो है वो सोचेगा कि ये गुरु जो है ठीक है, वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है वो, लेकिन ज़्यादा उसके साथ फॉलोअर्स नहीं है। इस तरह उसके मन में विचार भी आएगा, अपराध के नहीं है, इधर अपराध हो गया, क्योंकि ये 8 मिलियन लोग कौन है आपको मालूम ही नहीं, उनका चेहरा भी शक्ल भी देखा नहीं आपने, वो कैसे आपको टिक किया वो भी मालूम नहीं आपको, और कितना समय देखा आप वो एनालिटिक्स देखेंगे, 2-2 मिनट लोग देख कर निकल जाते हैं। हाँ, आपसे बड़ा परिवर्तन नहीं आया उनमें। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ बहुत ही कला के कारण अगर हम बहुत अहंकारी हो जाएंगे, ऐसे अहंकारी लोग अनेक लोगों का अधोगति हुआ है, करेक्ट है ना। इससे चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो अवतरित हुए हैं, लेकिन परमानंदपुरी, रंगापुरी इन लोगों के साथ कैसे रहे। तो इसलिए अगर कोई मशहूर भक्त है, वो जितना भगवान अपने गुरु के श्री चरण में अपने आप को चिपक कर रखता है, छोड़ता नहीं उसको, उतना वो सुरक्षित अवस्था में रहेगा। इवन इफ अ डिवोटी इज हाईली टैलेंटेड इन एनी फील्ड, वो सारे दुनिया, एक वैष्णव ने गीत गाया है उसमें बताते हैं कि हे कृष्णा, अगर सारे दुनिया मुझे मनाता है लेकिन आप मेरे से नाखुश हो, मेरे जीने का क्या मतलब है। लेकिन हे कृष्णा, अगर सारे दुनिया मेरे ऊपर थूकता हो लेकिन आप मुझे प्रेम की दृष्टि से देखते हो, तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए दुनिया में, सारी दुनिया थूकने दे, ऐसे गीत है। इसलिए हमको जीवन में यश नहीं तो जीवन में सक्सेस पाना हो तो बहुत सरल है, गुरु और कृष्ण को तृप्त करना है बस। गुरु और कृष्ण मेरे से तृप्त हैं तो मैं सारी दुनिया को जीत लिया। दुनिया के लोग कुछ भी बोले हमको परवाह नहीं, अगर गुरु बोलते हैं कि तुम सही कर रहे हो, मैं तुमसे खुश हूँ बस। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड को हमें अपनाना चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे आदर्श प्रदर्शित करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि कैसे। इसलिए उन्होंने पूछा, जब आंखों में अश्रु बहाने लगे तब तुरंत गुरु के पास पूछा कि मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहा है, ये सर कृपा मंत्र दिला गोसाई कृपा दार बल, उन्होंने पूछा। गुरु ने बोला, नहीं हे वत्स, तुम सही दिशा में हो, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर तुम शुद्ध हो गए हो। दिस इज द, यही तो स्वभाव है, दिस इज एक्चुअली द नेचर ऑफ महामंत्र। तो गुरु से कन्फर्मेशन हो गया, वो खुश हो गए, क्योंकि अभी नवद्वीप में भी एक बार जब चैतन्य महाप्रभु गुरु को मिलकर आए थे, वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, कुछ लोगों ने बोला कि इनका वात बढ़ गया, इसके कारण पागल हो गया, ऐसे किसी ने बोला, इसका हवा ये हो गया शरीर के अंदर, इसलिए वो हंस रहा है, रो रहा है, ऐसे कुछ लोगों ने बोला। लेकिन गदाधर पंडित आकर उनको शांत बना दिया, किया उनको, है कि नहीं है। लेकिन अगर दुनिया के लोग कुछ भी बोलेंगे आपको, तुम ऐसा मत करो, जैसे वो एक पिताजी और बेटा और गधा का कहानी सुना आपने, लोग बोलेंगे अगर बेटे को बिठाओ, तुम बैठो, दोनों बैठो, बोले दोनों मत बैठो, गधे के उठाओ ऊपर, अलग अलग बोलेंगे वो लोग। लेकिन अगर गुरु और कृष्ण खुश हैं तो आपको चिंता नहीं है। इसलिए तो चैत्र महाप्रभु वरिष्ठों से ऐसे बर्ताव करते हैं, और अपने समा भक्तों से, जैसे वल्लभाचार्य के साथ कैसे उन्होंने व्यवहार की, बहुत आदर पूर्वक व्यवहार की उन्होंने। और जब वो पंडित थे, निवाय पंडित, तभी ये केशव कश्मीरी पंडित आए थे उनके पास, जब उनके मित्र सब हंस पड़े उनके ऊपर, महाप्रभु निमाय पंडित ने बोला आपको हंसना नहीं, उनको निंदा नहीं करना चाहिए, तो आदर दिया उनको, ही डेल्ट विथ हिम इन अ वेरी रेस्पेक्टफुल मोड, आप देख सकते हैं। बाद में जब सर्व भट्टाचार्य प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती भी सन्यासी थे, महाप्रभु भी सन्यासी थे, उन लोगों के साथ बहुत आदरपूर्वक और नम्र भावना के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्तिपूर्ण प्रचार, ऐसे बताया जाता है महाप्रभु के बारे में, प्रीति के साथ व्यवहार किया, युक्ति के साथ प्रचार किया, इसके कारण बहुत उसका असर पड़ा, वो लोग वो सब लोगों में परिवर्तन आया ऐसे। अभी कनिष्ठों को देखेंगे, जैसे रूप सनातन उनके साथ कैसे व्यवहार किया, ऐसा नहीं कि महाप्रभु हमेशा प्रेम के नाम में हमेशा उनको बस आलिंगन करते थे, प्रेम दिया, जब करेक्शन देना हो उसको भी उन्होंने बहुत सही ढंग से दिया। जैसे सनातन गोस्वामी के पास एक कास्टली ब्लैंकेट था महंगा, महाप्रभु ने क्या बोला कि उनको ये ब्लैंकेट किधर से लाया, पूछा, सिर्फ देख रहे थे ऐसे, बार बार उसको ही देख रहे थे, तुरंत समझ गए वो सनातन, उसको जाकर एक भिखारी को देकर एक फटा कपड़े लेकर आए, महाप्रभु खुश हो गए, आप देखेंगे। और बलभद्र भट्टाचार्य एक दिन आकर बोला कि उधर का कालिया के ऊपर भगवान कृष्ण नर्तन कर रहे हैं, आपकी अनुमति चाहिए, मुझे जाने के लिए जा सकता हूँ क्या, महाप्रभु ने प्रेम से एक लाफा दिया उनको, है बोला कि अरे कलयुग में भगवान किधर आते हैं, भगवान तो द्वापर युग में आते हैं। तो अगले दिन सत्य बात निरूपण हो गया। तो इस तरह महाप्रभु कृष्ण देते हैं, इस तरह जगदानंद पंडित जाना चाहता है वृंदावन, महाप्रभु ने तुरंत छोड़ दिया क्या उनको, पहले मना कर दिया, नहीं नहीं जा सकते, वो जाकर स्वरूप दामोदर के पास रिकमेंडेशन मांगा हो। तो स्वरूप दामोदर रिकमेंडेशन देते हैं तो महाप्रभु को ना बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है स्पेशल रेको आ गया, ठीक है बुलाया उन्होंने, ठीक है तुम दो नहीं तो चार दिन जाओ वृंदावन में, बस अकेले मत रहो, सनातन के साथ रहो, ब्रजवासियों के साथ मत मिलो, उस वो दे आर स्पॉन्टेनियस डिवोटीज, रागानुग भक्त हैं, उनके चरित्र में तुम दोष देखोगे, इसलिए उनसे दूर रहो और जल्दी रिटर्न आ जाओ, ऐसे उपदेश दिया। तो आप देखते हैं कि महाप्रभु सही उपदेश सही समय जिसको देना हो उन्होंने दिया है। अभी छोटा हरिदास, तो उसने माधवी माता के यहाँ जाकर कुछ चावल लेकर आया, कुछ तो बातचीत हुआ उनके बीच में, तो महाप्रभु आने के बाद जब चावल को खाया, सब लोगों ने सोचा कि चावल जैसे बासमती चावल एकदम फुला फुला होता है, बहुत अच्छा होता है, महाप्रभु ने खाया चावल अच्छा है बोला उन्होंने, लेकिन तुरंत पूछा उन्होंने किसने लाया है, तब उनको पता चल गया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है सबके हृदय में, क्या नहीं जानते वो, हाँ वो जानते हैं, वो तुरंत उनको बहिष्कार कर दिया। उसके बाद वैष्णव ने बहुत याचना की, वो लोग परमानंदपुरी के पास गए, परमानंदपुरी भी आकर उनको विनती किया, महाप्रभु बोले कि अगर आप सब लोग मुझे पाबंदी करोगे तो मैं आलानाथ पे चला जाऊँगा, तो कोई बोलने के लिए साहस नहीं किया। तो उधर लिखा है भगवान सुठाकुर लिखते हैं, चार पाँच पॉइंट लिखा है उन्होंने, उसमें से एक पॉइंट बताते हैं कि आने वाले समय में सब सारे गौड़ीय वैष्णवों को ये बात सिखाने के लिए महाप्रभु ने छोटा हरिदास को एक उदाहरण बनाया, ऐसे भक्तों को, उनके पार्षद था वो, साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उनको एक निमित्त बनाकर हम लोगों को सिखा रहे हैं कि स्त्री पुरुष के विषय में कभी भी खास करके ब्रह्मचारी सन्यासी पढ़ना नहीं चाहिए, अगर उसमें दूषित हो जाएंगे तो उनके अंदर कुछ शक्ति नहीं रहेगा, वो आसार हो जाएंगे उनके जीवन में। तो इसी तरह दूसरा व्यक्ति था काला कृष्णदास, वो दक्षिण भारत में जब गए थे, वो भी भटक गया था, लेकिन उसको तुरंत उन्होंने डांटा नहीं, क्यों, तुरंत डांटेंगे तो भक्ति छोड़कर चला जाएगा वो, इसलिए महाप्रभु अपने आप को ही केप्ट द कॉन्फिडेंस, चुप रहे, लेकिन उनको शिका पकड़ कर लाया, बचा दिया उनको, लेकिन वापस लौट आने के बाद नित्यानंद प्रभु के पास सौंप दिया, ये तुम्हारा सेवक है, नित्यानंद प्रभु सर्वेंट था, उनके पास दे दिया और बोला कि नाउ आई डोंट वांट टू हैव हिम एज माय सर्वेंट नाउ एनी मोर, थोड़ा नाराज भी हुए महाप्रभु। उसके बाद नित्यानंद प्रभु और वैष्णव ने उनको सेवा में लगाया। तो महाप्रभु हमको सिखाते हैं। और रूप गोस्वामी एक बार एक सुंदर कविता लिखी थी जो झोपड़ी में रखा था उन्होंने सिद्ध बकुल में, महाप्रभु उसको उठाकर पढ़ा, इतना परमानंदित हुए कि मेरे मूड को कैसे समझ लिया रूप गोस्वामी ने। जब रूप गोस्वामी समुद्र में नहाने के बाद वापस लौट आए, आकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उनको महाप्रभु बुलाकर प्रेम से आलिंगन किया, बोला कि रूप तुमने कैसे मेरे बात मन की बात समझा तुमने हा? तो उसको लेके जाकर स्वरूप दामोदर को दिखाया उन्होंने। बाद में कुछ दिनों के बाद स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सर्वभट्टाचार्य सब लोगों को साथ में लेके आए सिद्ध बकल में, और रूप गोस्वामी की बहुत गुणगान किया। ऐसे बताया गया चरण चरितामृत में, जैसे महाप्रभु को पांच मुख के साथ, अगर किसी के पास पांच मुख हो ऐसे गुणगान किया उन्होंने उनके। तो महाप्रभु प्रशंसा ही नहीं करते, डांट ही नहीं देते, लेकिन महाप्रभु शक्तिपात करते हैं, एम्पावरमेंट करने में बड़े एक्सपर्ट हैं जूनियर्स को एम्पावरमेंट करने में। जैसे उन्होंने छः गोस्वामियों को अलग अलग स्थान से इकट्ठित किया उन्होंने, करेक्ट ना, रूप सनातन जो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जाने में थे और नवाबुद्दीन शाह कैंटर में काम करते थे, उनको पहले लाया है। उस तरह जीव गोस्वामी उनके क्या बोलते हैं उनके भांजा है, क्या भांजा, भतीजा बोलते हैं, भतीजा को भी उनको भी जोड़ दिया भक्ति में इसमें। वो तो बचपन से प्रेरित थे जीव गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी देखते थे कि रूप सनातन की कृपा कैसे मिला महाप्रभु से हैं, उन्होंने देखा था। तो इस तरह तपन मिश्रा का बेटा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और वेंकट भट्ट की बेटा जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, खास करके महाप्रभु अच्छे अच्छे पवित्र आत्माओं को जोड़ कर प्रपोजिस बैंड ऑफ सिक्स गोस्वामीज बनाया उन्होंने वृंदावन में वृंदावन में उनको रखा। खुद को उनकी माँ ने बोला था तुम रहो उधर जगन्नाथपुरी में, लेकिन देखिए जगन्नाथपुरी में रहकर वृंदावन में इन लोगों को भेज कर पहले बुलाते थे जगन्नाथपुरी में, उधर उनको प्रेरणा देकर शक्तिपात करके उनको इधर भेजा वृंदावन में। उसके बाद ये लोगों ने क्या क्या किया, क्या एम्पावरमेंट है। दशाश्वमेध घाट में 10 दिन बिताया रूप गोस्वामी के साथ और सनातन के साथ 3 महीना है, पूरा सनातन शिक्षा रूप शिक्षा इत्यादि दिया है, जिसको हम लोग पढ़कर इतना लाभान्वित हो रहे हैं हम लोग। तो महाप्रभु सब तीनों जूनियर सीनियर इक्वल इनके संबंध में बहुत अच्छा व्यवहार अपने लीलाओं के द्वारा हमको सिखाया है। इसमें एक और कैटेगरी है जिसको बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे, जो जगदानंद पंडित है, वो महाप्रभु के पेट थे, बहुत निकट थे वो, बहुत प्रिय थे। तो महाप्रभु ने उनको डांटा भी एक बार, प्रेम से डांटा, ही हैड अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। उन्होंने बोला ये जगह तुमने सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाने के लिए आदेश दिया, ऐसे पूछा उन्होंने। तब उन्होंने बोला तुम कौन हो उनको आदेश देने वाला, इनको तो मैं भी गुरु मानता हूँ, इनसे मैं उपदेश लेता हूँ, ऐसे बोले महाप्रभु। तब सनातन को बहुत संकोच हुआ। सनातन बोले माय लॉर्ड यू आर फीडिंग द यू नो नेक्टर ऑफ स्वीट राइस टू हूँ जगदानंद पंडित, नेक्टर ऑफ चैस्टाइसमेंट, आप आपके डांट ये स्वीट राइस जैसे डांट दे रहे हैं आप किसको, जगदानंद पंडित को, एंड यू आर फीडिंग मी द नेम फ्रूट ऑफ फॉर्मल रेस्पेक्ट, ऐसे बोले। लेकिन अलग अलग भक्तों के साथ हमारा अलग अलग संबंध जुड़ता है, किसी के साथ वो औपचारिक होता है, किसी के साथ थोड़ा और भी निकट होता है। तो हम लोग सम भक्तों के साथ सजातीय स्निग्ध स्वतोवर, ये 3 प्रिंसिपल रूप गोस्वामी बताते हैं उनके भक्त सम सिंधु में। सजातीय का मतलब लाइक माइंडेड, जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु सजातीय है, स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि वो सजातीय है, नित्यानंद प्रभु रजताचार्य प्रभु वो सजातीय है, ऐसे गोपीनाथाचार्य और सर्वभट्टाचार्य सजातीय। तो इस तरह हम वैष्णव मित्रों के साथ संग रखना बहुत आवश्यक है। तो ये जो सभा, बड़ी सभा इधर इकट्ठित किया गया है हमारे IIYC वेस्टर्न विंग लीडर्स के द्वारा, इसका मूलभूत उद्देश्य है कि जो वैष्णव भक्त लोग युवकों के प्रचार में जुड़े हैं सबको इकट्ठित किया जाए, उनको ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें आएंगे वो लोग, नाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे और लंच के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर इसमें मैत्री जोड़ सकते हैं और एक दूसरे से प्रेरणा लेकर वापस लौटेंगे अपने अपने एरिया में। किसी भक्त को मिलकर आपको अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिल गया, आपको किसी भक्त को के साथ बात करके आपको एक दिशा मिल गया। हमें अब आगे हम कैसे जा सकते हैं, आपके पास कुछ शंका हो तो शंकाओं को पूछ सकते हैं दूसरे भक्तों को, और अपने अपने स्थान में जाने के बाद भी आप ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, आप टेलीफोन के द्वारा आप कांटेक्ट रख सकते हो एक दूसरे के साथ। इससे हमारी वेस्टर्न डिविजनल काउंसिल एकदम मजबूत हो जाएगा। इस तरह से चारों उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशा में इस तरह का मीटिंग्स आयोजन किया जा रहा है। IIYC जो कोर कमेटी पहले उन्होंने सारे भारत के युवा प्रचारकों के लिए आयोजित की थी, अभी ये जो चार विंग किया गया है ताकि मोर डीपर पेनेट्रेशन होगा और अनेक युवकों के प्रचार का संख्या और भी बढ़ सकता है। सो ये श्लोक उचित श्लोक है हम लोगों को सीखने के लिए, खास करके दिस इज़ अ फोरम फॉर स्पेशली फॉर इक्वल डिवोटी एसोसिएशन। तो इसमें जिनके साथ स्निग्ध सजातीय आपसे स्वतोहर का मतलब है हमसे, उनसे सीखने लायक कुछ है हमारे लिए, हम सीख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट अ लिटिल टाइम फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अदर डिवोटी फ्रेंड्स। कभी कभी हम लोग वी बिकम लाइक एपेक्स इन अ पिरामिड, मी एंड माई फॉलोअर्स, उसमें हम लोग डूब जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है हमारे सम भक्तों को मिलने के लिए। सम भक्त और हमसे वरिष्ठ भक्त, इनके साथ संबंध रखने से हमारे गर्व और अहंकार को हम चूर चूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंडर जो भक्त हैं उनके साथ संग रखने से वो लोग हमको ऐसे प्रशंसा करते हैं मानो हमको लगता है कि हम शुद्ध भक्त हैं। ये हर एक प्रचारक का अनुभव होगा। यू गो टू योर प्रोग्राम वेयर यू आर डीलिंग विद जूनियर्स, इमिडिएटली सडनली फील यू हैव अ हेलो अराउंड द हेड, होलियर देन दाउ एटीट्यूड बोलते हैं, आई एम ग्रेट, आई एम प्योर डिवोटी, आई एम अ सेल्फ एपजेंट आचार्य, इस तरह का विचार है मन में उठने की संभावना है। इसलिए ये जो संघ है बहुत आवश्यक है। तो साल में मैंने सुना कि एक बार इस तरह का संघ है डिविजनल काउंसिल का, और दूसरा सारे भारत के युवक प्रचारक साथ में भी आने वाले हैं। आई थिंक दैट इज इन सेप्टेम्बर और नवंबर, दैट्स इन नवंबर या। तो एक मैं IIYC कोर कमेटी के भक्तों को, लीडर्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये लोग कभी कभी 3 दिन 4 दिन मीटिंग लेते हैं, क्योंकि इतने युवक प्रचारकों को संभालना और मीटिंग आयोजन करना, और साल भर अनेक न्यू इनिशिएटिव्स उन्होंने लिया है, मैनी न्यू इनिशिएटिव्स टू कीप द यूथ प्रीचिंग एक्सपैंडिंग फार एंड वाइड। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, एंड लेट दिस न्यू लेट दिस प्रोग्राम ऑफ IIYC सेंट्रल इंडिया, आई मीन IIYC ऑल इंडिया एज वेल एज डिविजनल काउंसिल, लेट इट गो ऑन फॉर मेनी ईयर्स। उसके द्वारा हम अपेक्षा करते हैं कि आप भक्त लोग एक दूसरे के मंदिर में जाओगे, और उनको आपके मंदिर में दूसरे भक्तों को बुलाओ, आप उनके मंदिर में जाओ, समय बिताओ। इस तरह जस्ट नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम बड़ौदा, मैंने केम ईयर, वंशीधारी प्रभु ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन की थी उधर। हम लोग इस तरह जाएंगे, थोड़ा समय देंगे दूसरे भक्तों को, देन वी विल बिकम वेरी स्ट्रांग इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड वी कैन इंस्पायर अदर्स टू बिकम स्ट्रांग ऑल्सो। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की, श्रीमद्भागवतम की,
हरे कृष्ण। धन्यवाद हरेश्याम प्रभु, आपने एक सुंदर तरीके से इतना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय 1 घंटे में आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर किए बिंदु के रूप में। और सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राधेश्याम प्रभु जो विषय लिए उसमें वो खुद उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो राधेश्याम प्रभु अभी 2 दिन हमारे साथ पूरा यहाँ पर है, तो कृपा करके जैसे उन्होंने कहा ना संग लीजिए, तो कृपया भक्तों का संग लीजिए लेकिन उनका भी संग लीजिए। 2 दिन राधेश्याम प्रभु का मिलना बड़ा कठिन है, तो यहाँ पर हम उनके आभारी है कि उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन दिया और हमें कृतार्थ किया। हम उनका अभिनंदन करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल। तो प्रश्नोत्तर के लिए समय नहीं है, लेकिन प्रश्नोत्तर को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे पैनल डिस्कशन है जहाँ पर राधेश्याम प्रभु रहेंगे, उस पैनल में अपना जो प्रश्न है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। 2-3 छोटी अनाउंसमेंट बिफोर वी गो लीव, एक है कि यहाँ पर यहाँ से महावन जाना है जहाँ पर ब्रेकफास्ट है अभी प्रसादम, तो इसलिए काफ़ी जो डिवोटीज यहाँ पर सीनियर है जो चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए हम कार्ट है अरेंज किया है, तो उसका आप उपयोग कीजिए जो सीनियर डिवोटीज है चलना डिफिकल्ट हो रहा है उनको, ताकि वो जल्दी पहुँच जाए। और हमारा नेक्स्ट सेशन 10:30 को था, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, 10:30 को पहुँचना था, लेकिन कमलोचन प्रभु की तरफ से थोड़ा एक उनको ज़्यादा अधिक प्रेजेंट करना है, तो 10:15 को बुला रहे, तो समय कम है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और ब्रेकफास्ट लीजिए और थोड़ा रेस्ट लेके फिर से योगा स्टूडियो गौशाला वहाँ पहुँच जाइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।